सत्यवचन।
नमस्कार, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरा
मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे।
प्रिय मित्र, आपको प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मेरा नमस्कार मिले। मैं आशा करता हूँ कि प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने प्रियों के साथ में प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु अवश्य ही आप सबको अपनी आशीष प्रदान करेंगे, क्योंकि इस अध्याय में हम कुछ विशेष विषयों पर विचार करने जा रहे हैं। इसलिए आप इस अध्ययन पर अवश्य ही विशेष ध्यान दें कि परमेश्वर इसराइलियों से अपने वचन के द्वारा क्या कहते हैं। उन्हें उनके दासत्व से छुड़ाने और नए देश में ले जाने की बात है, जो आज आपके लिए भी जरूरी है कि हम पाप से छूटकर मुक्ति को पाएं, जो सिर्फ परमेश्वर ही हमें दे सकते हैं। तो आइए हम आज के अपने अध्ययन को निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय उसके 6 पद से आरंभ करें। हम निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय उसके 6 से 8 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, इस कारण तू इसराइलियों से कह कि मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। अब हम यहाँ छुटकारे के 7 मैं करूंगा शब्द को देखते हैं। पहला है, मैं तुम्हें मिस्रियों के बोझ से बाहर निकालूंगा। दूसरा, मैं तुम्हें उनके दासत्व से मुक्त करूंगा। तीसरा, मैं तुम्हें एक फैलाए हुए भुजा के साथ छुड़ाऊंगा। चौथा, मैं तुमको अपनी प्रजा होने के लिए अपना लूंगा। पांचवा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। छठवां, मैं तुम्हें वह देश दूंगा। सातवां, मैं तुम्हें वह देश वंशजों के लिए दे दूंगा। मित्रों, मैं तुम्हें मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा। इस कथन में हम मसीह में हमारे छुटकारे के समानांतर को पाते हैं। आज हम पापों के बोझ को ढोते हैं, जो संसार की चीजें हमारे हृदय के लिए एक अत्याचार है। हमें कहा गया है कि संसार से प्रेम मत करो। परमेश्वर हमें प्रभु यीशु के विश्वास के द्वारा हमें पापों के बोझ से छुटकारा दे सकते हैं। मैं तुम्हें उनके दासत्व से मुक्त करूंगा। परमेश्वर आपको पाप के दासत्व से छुड़ाएंगे। मैंने एक अद्भुत पत्र एक व्यक्ति से प्राप्त किया, जिसने इस तथ्य को समझा कि परमेश्वर पाप के दासत्व से छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। यह व्यक्ति विद्वान है, परंतु वह पाप में जीवन जिया। उसके कम से कम 6 अवैध संतानें थी, जो कि उतने ही स्त्रियों के साथ उसके अनैतिक संबंध के परिणाम थे, और अपने जीविका के लिए कार्य भी पूरी ईमानदारी और बिना छल कपट के नहीं करता था। उस व्यक्ति का पेशा जांच करना था, और शायद ही किसी ने उसके बारे में ऐसा सोचा होगा। तब उसने प्रतिदिन हमारे रेडियो प्रसारण को सुना आरंभ कर दिया, और परमेश्वर के वचन ने उसके साथ बातचीत किया। जैसे जैसे वह बाइबल के सच्चाइयों से परिचित होता गया, वैसे वैसे अंधेरा उसके जीवन से दूर होता चला गया, और उसके हृदय और जीवन में ज्योति प्रवेश किया। उसने यह मान लिया कि वह प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है। परमेश्वर ने इस व्यक्ति का उद्धार किया, और उद्धार देना ही परमेश्वर का कार्य है। मित्रों, जब इसराइल लोग मिस्र देश में बंधुआई का जीवन जी रहे थे, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें इस देश से अर्थात इस स्थान से बाहर निकालने जा रहा हूँ, और मैं तुम्हें दासत्व के बंधन से मुक्त करने जा रहा हूँ। मैं अपनी भुजा बढ़ाकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। इस प्रभावशाली भुजा की बात यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। जो समाचार हमें दिया गया है, उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? यशायाह 53 उसके 1 पद में हम पाते हैं, जो भी हो, मैं नहीं जानता कि यह किसे प्रकट किया गया। आज परमेश्वर स्त्री और पुरुष के हृदय और जीवन में अपने उद्धार के कार्यों को कर रहे हैं। हम में से प्रत्येक को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, जो हमें हमारे पापों से बचाए, क्योंकि हम जब परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी हैं, उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी ताकि हम बचाए जाएं। जब हमारे लिए इतना कर सकता है, तो हमें भी एक पापी के रूप में प्रभु के पास आने की इच्छा रखनी चाहिए। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के कार्यों पर जो उसने हमारे लिए किए हैं विश्वास करते हैं, तो हम उद्धार पाएंगे। मित्रों, परमेश्वर के पास उद्धार के लिए एक बड़ी योजना है, परंतु मनुष्य को इसके लिए परमेश्वर के पास आना होगा, तब वह आपको अपनी बढ़ाई हुई भुजा से बचा लेंगे। अगली बात हम देखते हैं, मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमें पाप के दलदल में से निकाल कर अपना बेटा बना लिया है। अब वह हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बचाया है कि वह हमें बचाकर दूर चला जाए या हमें त्याग दे। वह हमारा परमेश्वर होना चाहता है। यदि आप वास्तव में बचाए गए हैं तो आप वैसा जीवन नहीं जिएंगे जैसे कि परमेश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है तो यह आपके जीवन को बदल कर रख देगा। वह आपका परमेश्वर ठहरेगा और आप उसको दंडवत करेंगे और जानेंगे कि वह कौन है। मित्रों, परमेश्वर आपका उद्धार करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जानें। वह चाहते हैं कि आप उद्धार पा जाएं। वह आपका परमेश्वर होना चाहते हैं और वह हमें अपने लोगों के लिए चाहते हैं। आगे हम देखते हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर ने मसीह के विश्वासियों को जगत के आधार से पहले ही चुन लिया है, जिसका जिक्र पूर्व काल में किया गया है। चुनाव का कारण विश्वासियों में नहीं पाया जाता है, परंतु अनंत बुद्धि वाले परमेश्वर के उद्देश्य में पाया जाता है। वह अपने लोगों से प्यार करने के लिए संघर्ष नहीं करता है, इसके बावजूद भी कि उनकी कई कमजोरियां हैं। परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करते हैं क्योंकि उसका स्वभाव प्यार करना है। वह हमारा परमेश्वर होना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं, मैं तुम्हें वह प्रदेश दूंगा। यह प्रदेश कनान है। परमेश्वर के द्वारा यह वादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दी गई थी। कनान एक स्वर्ग का चित्रण नहीं है, यह चित्रण एक मसीही विश्वासी के जीवन का है जो एक विश्वासी को जीना चाहिए। कनान स्वर्गीय चिन्ह को प्रकट करता है, जहां पर हम सभी प्रकार के आत्मिक आशीषों से आशीषित होते हैं। एक विश्वासी को अपने उच्च बुलाहट के योग्य चलना है ताकि पूर्ण आत्मिक आशीष का आनंद उठाए, और यह आत्मा में भरने के द्वारा होता है। हम इसे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 5 अध्याय के 18 पद में देख सकते हैं। यहाँ पर युद्ध और लड़ाइयां भी है जिसे जीतना है। कभी कभी विश्वासी लोग अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे वे इस संसार के निर्जन प्रदेश में दिवालिया हैं, और वे परमेश्वर के अनुग्रह और दया के भंडार में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं। क्या आज आप अपना जीवन जीवित उद्धारकर्ता के प्रेम और ज्योति में बिता रहे हैं? आगे हम देखते हैं, मैं तुम्हें विरासत में यह देश दूंगा। पौलुस रोमियो की पत्री के 5वें अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं और परमेश्वर के साथ शांति हमारे प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें मिलता है। हमारे लिए उसके पास जाने की स्वतंत्रता है। हमारे पास दुख के बीच में भी आनंद है। हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिया गया है कि वह हम में वास करे, और परमेश्वर के प्रेम को हमारे लिए वास्तविक बनाया गया है। हमें आने वाले परमेश्वर के क्रोध और महान क्लेश से बचा लिया गया है। मित्रों, आपके पास किस प्रकार का उद्धार है जिसके बारे में आप बातचीत करते हैं, लेकिन इसने आपके जीवन को नहीं बदला है या आपको कुछ चीजों से छुटकारा नहीं दिया है? ये पद हमारी संपत्ति के बारे में कहती है और हमारे उद्धार को चित्रित करती है। हम निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, और ये बातें मूसा ने इसराइलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। ऐसे समय में आपके हृदय को इसराइलियों की संतानों के पास जाना चाहिए। उन्हें मूसा की बातों पर विश्वास करना असंभव लग रहा था क्योंकि उसने उनके मामलों में कोई मदद नहीं की, परंतु सिर्फ बोझ के प्रति वह जिम्मेदार था। हम निर्गमन 6 अध्याय उसके 10 से 13 पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इसराइलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। और मूसा ने यहोवा से कहा, देख इसराइलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले को क्यों कर सुनेगा? और यहोवा ने मूसा और हारून को इसराइलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए आज्ञा इस अभिप्राय से दी कि वे इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। मित्रों, इसराइली संतानों के द्वारा मूसा को स्वीकार नहीं किया गया और न ही वह फिरौन के द्वारा स्वीकार किया गया। परमेश्वर ने मूसा को फिरौन से फिर से बात करने के लिए कहा, और मूसा वहां जाना नहीं चाहता था। उसकी आंखें परिस्थितियों पर थी, न कि परमेश्वर पर। आगे हम देखते हैं इसराइलियों की आंशिक वंशावली। मित्रों, इन सब मुश्किलों और परिस्थिति के बीच में भी हम एक अनोखी घटना में आते हैं। परमेश्वर इसराइलियों की सूची फिर से बनाने के लिए सचेत है। जहां तक पुराने नियम की बात है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। वास्तव में इन सब नामों को पढ़ना मेरे लिए उबाऊ है और यह मुझे नींद दिलाती है, परंतु वे परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण और रोमांचकारी है। वह वंशावलियों की सूची बनाने में जोर देते हैं और परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसे हम जाने कि वे कौन है और उसके संतान कौन है। इसी रीति से परमेश्वर आपके और मेरे बारे में भी सोचते हैं। वह हमसे चाहते हैं कि मसीह में विश्वास द्वारा हम भी परमेश्वर के बेटे बन जाएं। हम आगे पढ़ेंगे इसराइलों की वंशावली और उनके जीवन काल के बारे में। निर्गमन की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 14 से 16 पद में लिखा है, उनके पितरों के घराने के मुख्य पुरुष ये हैं, इसराइल के जेठा रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी थे। इन्हीं से रूबेन के कुल निकले और सिमोन के पुत्र यमुएल, यामीन, ओहद, याकीन और सोहर थे और एक कनानी स्त्री का बेटा शाउल भी था। इन्हीं से सिमोन के कुल निकले और लेवी के पुत्र जिनसे उनकी वंशावली चली उनके नाम ये हैं, अर्थात गेर्शोन, कहात और मरारी। और लेवी की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। मित्र, लेवी के 3 पुत्र थे, गेर्शोन, कहात और मरारी। ये वही पुरुष हैं जो मरुभूमि से होकर तंबू को ले चलेंगे। कोहन नाम कहात के नाम से आता है, परंतु अधिकतर यहूदी आपको यह नहीं बता पाएंगे कि वे किस जाति से संबंध रखते हैं। इन नामों की सूची बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वंशावली वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाती है। निर्गमन 6 अध्याय के 18 से 20 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और कहात के पुत्र अब्राम, इसहार, हेब्रोन और उज्जैल थे और कहात की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई और मरारी के पुत्र महली और मूसी थे। लेवियों के कुल जिनसे उनकी वंशावली चली ये हैं, अब्राम ने अपनी फूफी यकुबेत को ब्याह लिया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए और अब्राम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। मित्रों, इस परिच्छेद में मूसा और हारून के माता पिता के नाम दिए गए हैं, अब्राम और उसकी पत्नी यकुबेत। यह प्रश्न पूछा जाता है कि हारून की जिंदगी में मूसा की अपेक्षा भय एवं आशंका क्यों नहीं थी जबकि फिरौन के द्वारा इब्री बच्चों को मारने की आज्ञा दी गई थी। इसका उत्तर स्पष्ट है, क्योंकि हारून मूसा से बड़ा था और उस समय राजा की आज्ञा लागू नहीं की गई थी। यह तब तक लागू नहीं हुआ था जब तक कि फिरौन ने यह नहीं देख लिया कि इसराइलियों की संख्या कैसे तेजी से बढ़ रही है, तब इब्री बच्चों को मारने का आदेश जारी कर दिया गया। मित्रों, आगे के कुछ पदों में हम वंशावली के विषय में देखेंगे और मैं अपने विचारों की श्रृंखला को पद 26 से आरंभ करना चाहता हूं। हम निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय के 26 और 27 पद में पढ़ते हैं, हारून और मूसा वे ही हैं जिनको यहोवा ने यह आज्ञा दी कि इसराइलियों को दल दल करके उनके जत्थों के अनुसार मिस्र देश से निकाल ले आओ। ये वही मूसा और हारून हैं जिन्होंने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि हम इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। हमने 12वें पद में पाया कि मूसा निराश हो गया था और ना तो इसराइलियों ने और ना ही फिरौन ने उसकी बात को स्वीकार किया। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर आगे आने और मूसा के विषय में पृष्ठभूमि देते हैं कि उसे दृढ़तापूर्वक अपनी जिंदगी दावे के मुताबिक जीना है इससे पहले कि वह इसराइल के संतानों को छुटकारा दिला सके। आज यहां पर वे लोग हैं जो कहते हैं कि मसीह की कुंवारी से जन्म की बात को विश्वास करना अनिवार्य नहीं है। मैं कहता हूं कि इस पर विश्वास करना बेहद अनिवार्य है, यह मसीह के प्रत्यय पत्र का एक अंश है। आपको उद्धार पाने के लिए उसके कुंवारी से जन्मने पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जब मैं मसीह के पास आया तो मैं कुंवारी से जन्म के बारे में अधिक नहीं सुना था। उद्धार पाने के लिए आपको उसकी मृत्यु और फिर से जी उठने में विश्वास करना चाहिए, परंतु जब आप उद्धार पाते हैं तब आप उसे जान जाएंगे और जब आप उसे जान जाएंगे तो आप उसकी कुंवारी से जन्म होने को ढूंढ निकालेंगे। यदि उसका जन्म कुंवारी से नहीं हुआ तो आपने उस पर विश्वास करने में गलती कर दी, क्योंकि यह वह नहीं है जो होने का दावा कर रहा था। जिसने भी सचमुच में उद्धार पा लिया है वह कभी भी यीशु मसीह की कुंवारी से जन्मने की बात को इनकार नहीं करेगा। यहां पर यह भी जरूरी है कि मूसा और हारून को वही होना है जो वे दोनों दावा कर रहे हैं। मूसा को मिस्र छोड़े 40 साल बीत चुके हैं और इसी बीच उसने मिद्यान के याजक की बेटी से शादी कर ली और अब वह फिर से मिस्र में वापस लौट आया है। आखिरकार वह कौन है? यह वंशावली हमें बताती है कि वह कौन है। वह लेवी जाति से है और उसके पिता और माता अब्राम और यकुबेद हैं। यह वंशावली मूसा के कार्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रत्यय पत्रों को प्रदान करती है जिसे पूरा करने के लिए उसे भेजा गया है। मूसा की आज्ञा का दोहराया जाना। प्रत्यय पत्र के आधार पर परमेश्वर मूसा और हारून के प्रति अपनी बुलाहट को दोहराते हैं। हम निर्गमन की पुस्तक के 6 अध्याय और उसके 28 से 30 पद में पढ़ते हैं। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही कि मैं तो यहोवा हूं, इसलिए जो कुछ मैं तुमसे कहूंगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। और मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं तो बोलने में भद्दा हूं और फिरौन क्यों कर मेरी सुनेगा। मूसा फिर से यहां पर बहाना बना रहा है, क्योंकि जो कार्य उसे करना था वह कोई आनंददायक कार्य नहीं था। उसे रास्ते भर हर तरफ से नकारा ही गया था, यहां तक कि लेवी जाति के होने का प्रत्यय पत्र दिखाने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं किया गया। अब लेवी याकूब का पुत्र था, याकूब इसहाक का पुत्र था और इसहाक इब्राहिम का पुत्र था। परमेश्वर ने इब्राहिम से इसराइल के संतानों के लिए शपथ खाई थी। मूसा कहता है कि मैं सही वंश क्रम में हूं, परंतु मैं जाने से हिचकिचाता हूं। मित्रों, मूसा के पास अधिक विश्वास नहीं है। यहां पर अध्याय 6 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को 7 से जारी रखेंगे। इस अध्याय में हम कुछ विशेष विषयों पर ध्यान करेंगे, जैसे प्रसंग में मूसा का उत्साहित होकर फिरौन के पास जाना, उससे इसराइल के संतानों को जाने देने के लिए कहना, मूसा की लाठी का एक सांप बनना, मिस्र के जादूगरों का अपने लाठियों को सांप में परिवर्तन करना, फिरौन के हृदय का कठोर होना और परमेश्वर का पहली विपत्ति को भेजना, पानी का खून बन जाना आदि। इसराइलियों के प्रभु परमेश्वर और मिस्रियों के देवताओं के बीच संघर्ष अभी तक जुड़ी थी, परंतु अब हम उसमें आ रहे हैं। परमेश्वर इसके लिए इसराइल के संतानों को तैयार कर रहे थे और मूसा और हारून को और यहां तक कि बूढ़े फिरौन को भी मुठभेड़ के लिए तैयार कर रहे थे। मित्रों, मूसा फिरौन के समक्ष खड़ा होने जा रहा है, परंतु हारून फिरौन से बातचीत करेगा। लेकिन क्या मूसा की जुबान बंधे हुए थे? क्या वह हकलाता था या उसे बोलने में कोई रुकावट होती थी? मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि मूसा की समस्या मानसिक थी। हो सकता है कि मरुभूमि में 40 साल तक रहने के बाद वह अपने आप को अपर्याप्त और अपयुक्त मानने लगा था। जो भी हो, परमेश्वर इसे बहुत स्पष्ट करना चाहते थे कि मूसा नहीं, परंतु वह इसराइल के संतानों को वहां से छुड़ाने जा रहे थे। इस सिलसिले में यह भी एक कारण है कि आज परमेश्वर के लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में चलना या कलीसिया में चलना बहुत कठिन हो गया है। मित्रों, हमेशा से ही कुछ व्यक्ति या कुछ संस्था जो इसके श्रेय को लेते रहे हैं। जब हम हमेशा उस श्रेय को लेने के मार्ग में होते हैं तो परमेश्वर के भुजबल का सामर्थ्य प्रकट नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर को मनुष्य के प्रारंभिक ज्ञान को मार्ग से हटाना पड़ा, क्योंकि वह मनुष्य के भुजबल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर संत पौलुस के द्वारा हमसे बात करते हैं और कहते हैं, जिसे हम रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मित्रों, कुछ लोगों के लिए यह विश्वास करना कठिन होता है कि मनुष्य में कोई अच्छाई नहीं है, बल्कि वे उसे अच्छा गिनते हैं, विशेषकर आकस्मिक संकट की घड़ी में। परंतु परमेश्वर हमारे स्वभाव को नहीं चाहते हैं, वह इसे उपयोग नहीं कर सकते हैं, वह इसे उपयोग नहीं करेंगे। परमेश्वर ने हारून के मानव स्वभाव को हटा दिया और अब वह मूसा के लिए बात करेगा। मूसा की आज्ञा का नवीनीकरण जारी है। मित्रों, यहां पर हम एक नबी की एक सर्वश्रेष्ठ परिभाषा को पाएंगे। मूसा फिरौन के सामने ईश्वर या देवता सा ठहरने जा रहा है और हारून मूसा के लिए एक प्रवक्ता बनने जा रहा है। हारून एक भविष्यवक्ता ठहरेगा और एक भविष्यवक्ता वह होता है जो परमेश्वर के लिए बोलता है और वह जिसके पास परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए होता है। एक भविष्यवक्ता याजक से विपरीत होता है, वह परमेश्वर की ओर से आता है। मूसा परमेश्वर को लोगों और फिरौन दोनों के सामने प्रस्तुत करता है और लोगों के बीच में जाता है, परंतु एक याजक परमेश्वर के सामने लोगों को प्रस्तुत करता है। एक याजक परमेश्वर के लिए नहीं बोलता और न ही नबी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वह तो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। हारून को लोगों के सामने मूसा का प्रतिनिधित्व करना है और मूसा को लोगों और फिरौन दोनों के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना है। मित्रों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक प्रतिनिधि भेजा ताकि उन्हें मिस्र देश की गुलामी से मुक्त कराए। आज हम सबका प्रतिनिधि प्रभु यीशु है, जो हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाता है और पिता परमेश्वर से मेल कराता है, हमारे लिए प्रार्थना करता और सहायता प्रदान करता है। वह हमारे पापों के बदले में मरा ताकि हमें उद्धार मिल सके। और वह तीसरे दिन जी भी उठा। यदि आज आप उस पर विश्वास करेंगे तो चाहे आपके पाप कितने ही बड़े और भयानक क्यों ना हो, वह आपके पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। मित्रों, हो सकता है कि आपके पापों के कारण आपके परिवार के लोग आपसे घृणा करते हैं, आपके मित्रगण आपसे बातचीत नहीं करते हैं, समाज आपको गिरे हुए व्यक्ति के रूप में देखती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप निराश मत होइए। एक व्यक्ति है जिसने आपके पापों की सजा अपने ऊपर उठा लिया है और वह आपसे बेहद प्यार करते हैं। वह आपके जीवन में शांति और आनंद देना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ सच हो जाए तो आज ही उसे अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए और कहिए, हे प्रभु, मैं एक पापी हूं, मैंने पाप किया है और मैं अपने पापों से पश्चाताप करते हुए क्षमा चाहता हूं। आप मुझे मेरे पापों से छुटकारा दें और मेरे जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लें और मेरे जीवन से अपनी महिमा को लें। मुझे एक नया व्यक्ति बनाइए। अनुग्रह से यह विनती सुन ले प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मित्रों, यदि आपने इस प्रार्थना को किया है तो प्रभु पर विश्वास कीजिए, उस पर भरोसा रखिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। हमारा समय यहाँ पर समाप्त होता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हे जग पिता।